शत्रुपा देवी का बदन बिल्कुल ठंडा था, इतना ठंडा कि उनको छूते ही दूसरों के हाथ पैर ठंडे पड़ जा रहे थे। उनको छूने से ऐसा एहसास हो रहा था कि किसी ठंडे प्रदेश में चले आए हो, या फिर सीधे हाथों से बर्फ की सिल्ली को छू दिया हो। लेकिन वहीं सामने लगी हुई मॉनिटर स्क्रीन पर उनकी शरीर का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा था। मेडिकल कॉलेज के बेस्ट डॉक्टर की पूरी टीम शत्रुपा देवी के एग्जामिन में लगी हुई थी और वो सब बिल्कुल हैरान थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू किया जाए। ब्लड प्रेशर से लेकर बॉडी टेम्परेचर तक सब कुछ अप डाउन कर रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? जूनियर डॉक्टर ने परेशान होते हुए अपने सीनियर से पूछा। अभी तो हमें किसी भी तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा, उसके बाद बात करते हैं, सीनियर ने नर्स को इंजेक्शन रेडी करने के लिए कहा। शत्रुपा देवी को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑक्सीजन मास्क से भी उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। उनका बदन रह रहकर अभी भी झटके खाते हुए उठ रहा था। सर, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, एक डॉक्टर ने सीनियर के हाथों में रिपोर्ट की कॉपी पकड़ते हुए कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इन्हें हुआ क्या है? सीनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए परेशानी से कहा। डॉक्टर, इंजेक्शन रेडी है, नर्स डॉक्टर की तरफ इंजेक्शन बढ़ाई। डॉक्टर ने नर्स के हाथों से लेकर जैसे ही शत्रुपा देवी को इंजेक्शन देना चाहा, अचानक से कमरे की लाइट चली गई। 30 सेकंड के लिए तो पूरे कमरे में अंधेरा हो गया था। ये क्या हुआ? एक साथ कई होठों से ये शब्द निकला, लेकिन अभी कोई कुछ समझ पाता। अचानक से आईसीयू के इस कमरे की लाइट तेजी से जलने और बुझने लगी। अरे, कोई जनरेटर चालू करने को बोलो, ऑक्सीजन की सप्लाई ना रुके, ये इमरजेंसी केस है, जल्दी करो, फास्ट। सारे डॉक्टर्स परेशान हो रहे थे, कमरे में शोर मचा हुआ था और ये सारा शोर शत्रुपा देवी के कानों को साफ साफ सुनाई पड़ रहा था, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। शत्रुपा देवी की आंखें डर के मारे फैलने लगी थीं, क्योंकि उनकी आंखों ने लाइट की इस लुकाछिपी के बीच में फिर से उसी लड़की वैशाली बंजारन को अपने सामने देख लिया था। इस समय उसके चेहरे पर आधा घूंघट पड़ा हुआ था, लेकिन उसके खून की तरह लाल होंठ दिख रहे थे और होठों पर जीत की तीखी मुस्कुराहट थी। शत्रुपा देवी को ये मुस्कुराहट जहर से बुझी हुई लग रही थी। गुस्सा, दर्द और बेबसी से शत्रुपा देवी का नस नस फटने को बेकरार था। अचानक से वो वैशाली बंजारन हवा की तेजी के साथ शत्रुपा देवी के बेड के सिरहाने आकर खड़ी हो गई। तूने ही मुझे बेबस किया था अपने उस बूढ़े तांत्रिक के साथ मिलकर, आज से 17 साल पहले। रानी साहिबा, तूने ही मुझे बेबस करके फिर से उसी महल के अंधेरे में कैद करवा दिया था, लेकिन देख, आज तेरी सारी कोशिश नाकाम हो गई। मैं पूरी तरह से आज़ाद हो गई, कहीं भी आने जाने के लिए आज मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, वैशाली बंजारन ने अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर गोल गोल घूमते हुए बोली। वो हॉस्पिटल में लगे हुए शत्रुपा देवी के बेड के चारों तरफ चक्कर काट रही थी और खुशी से अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए झूम रही थी। उसकी ये खुशी शत्रुपा देवी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। शत्रुपा देवी को अपनी बेबसी पर गुस्से के साथ साथ रोना भी आ रहा था। आज मैं आज़ाद हो गई और आज ही मैंने अपना पहला बदला भी ले लिया। जिस तरह से तूने मुझे बेबस करके उस महल में छोड़ दिया था, आज मैंने तुझे बेबस करके इस बेड पर मरने के लिए छोड़ दिया है। कहो रानी साहिबा, कैसा लग रहा है? इस हालत में तुम्हें मज़ा तो आ रहा है ना? वैशाली बंजारन ने शत्रुपा देवी का मजाक उड़ाते हुए पूछा। ना ना रानी साहिबा, तुम्हें मज़ा कहाँ आ रहा होगा, मज़ा तो मुझे आ रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर। जब तुम बहुत कुछ करना चाहती हो लेकिन कुछ भी करने में नाकामयाब हो जाती हो, तो जो बेबसी, गुस्सा, हताशा और छटपटाहट महसूस होती है ना, आज तुम्हें वही महसूस हो रही होगी। ठीक इसी तरह उस दिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, वैशाली बंजारन बिल्कुल शत्रुपा देवी के कानों के पास आकर बोली। वैशाली बंजारन की बात सुनकर शत्रुपा देवी अपनी पूरी ताकत से बेड पर से उठना चाह रही थीं, लेकिन उठने में अपने आप को बिल्कुल असमर्थ महसूस कर रही थीं। उनके खुद के शरीर ने जैसे हिम्मत छोड़ दी थी। वाह, मानना पड़ेगा तेरी हिम्मत को, अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान बाकी है। अच्छा है, अभी इनमें जान बाकी रहनी भी चाहिए, वरना मेरा इंतज़ार तो अधूरा ही रह जाएगा, तेरी आँखों में बेबसी देखने का इंतज़ार। ये मत सोचना कि तू जिद्दी है इसलिए जिंदा है, बल्कि तू सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू जिंदा रहे। अब तू देखती जा मैं कैसे तेरी आंखों के आगे ही फिर तेरे महल के अंदर आती हूँ और अपने राणा सा को अपना बनाती हूँ, वैशाली बंजारन ने बिल्कुल सर्द आवाज में कहा। उसकी बातों को सुनकर शत्रुपा देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। नाना रानी साहिबा, कुछ देर पहले तक तू नहीं चाहती थी इन आंखों को बंद करना, और अब मैं नहीं चाहती कि ये आंखें बंद हों, क्योंकि मैंने इन आंखों का इंतजार छीन कर अपना लिया है। अब तो तू बस देखती जा, इस बिस्तर पर लेटी लेटी अपनी बर्बादी का तमाशा देख, मेरे इंतजार को पूरा होते हुए देख, मेरे इंतकाम की आग को पूरा होते हुए देख, क्योंकि अब तो मुझे बस मेरे राणा साह के आने का इंतजार है। हर हर महादेव।